जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना हीरवन चारे यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारे यशो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Jagannath Jai Jagannath Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagan Jai Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nityai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nityai Gaura Hari
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरिषद् शिष्य मदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन विविटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरिषद् शिष्य मदभक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ऑन द लाइट फॉर प्रभुपाद्स ऑल्टर ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भागवत सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के नवे अध्याय पर चर्चा है जिसका शीर्षक है जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे और फिर उस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये श्लोक गद्य में है, काफ़ी बड़ा है, इसलिए बोर्ड पर लिखा नहीं है, केवल हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसके अनुवाद और तात्पर्य के बाद चर्चा करेंगे। शिष्य का उवाच अथ कस्यचिदीद वज वरस्यांगिरः प्रवरस्य शमदमः तपस्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रया विद्यान सुयात्म ज्ञान आनंद युक्तस्य आत्मसदृश श्रुतशीलचारु रूपौ दार्य गुणा नवसौदर्य अंगजा बभूर्वो मिथुनं च यवीयस्यां भार्यायामस्तु तत्र पुमांस्तः परम भागवतं राजऋषि प्रवरं भरतमृतसृष्टं मृगशरीरं चरणं चरम शरीरेण विप्रत्वं गतम आहु। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वह ब्राह्मण अंगीरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, विनम्र पंडित तथा किसी से न ईर्ष्या करने वाला था। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसी के समान योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए, जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राज ऋषियों में अग्रणी भरत महाराज के नाम से विख्यात था। तो यह कथा है उसके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। तात्पर्य, भरत महाराज महान भक्त थे, किंतु उन्हें एक जन्म में सफलता नहीं प्राप्त हुई। भगवद गीता में कहा गया है कि जो भक्त एक जन्म में सिद्धि कार्य पूरे नहीं कर पाते, उसे किसी योग्य ब्राह्मण कुल में या संपन्न क्षत्रिय अथवा वैश्य कुल में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। शुचिनाम श्रीमतां गेहे। भरत महाराज अपने प्रथम जन्म में क्षत्रिय कुल में महाराज ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु अपने आध्यात्मिक कार्यों की उपेक्षा करने तथा तुच्छ हिरण के अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग के पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु भक्त होने की प्रबल स्थिति के कारण उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। पश्चाताप के कारण वे एकांत जंगल में रहकर सदैव श्री कृष्ण का ध्यान धरते रहे। तब उन्हें एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करने का अवसर मिला। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाद्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तु ते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमस्तु ते असाधु साधु तदायीन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा Should get the papers edited. They don't have it behind. How will they sing? No, Debashish doesn't know. Prindai Padma Prabhu doesn't know. They refused paper. Did you give them? Should do your duty. Hare Krishna. तो ये नवा अध्याय पांचवें स्कंद का भी पिछले अध्याय से हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पिछले दो अध्यायों में भरत महाराज बड़े महान भक्त भगवान के लेकिन आसक्त हो गए। इस तात्पर्य में प्रभुपाद दो कारण दे रहे हैं कि भरत महाराज जैसे महान भक्त को भी हिरण का शरीर क्यों लेना पड़ा, क्योंकि साधारणता तो ये कहा जाता है भगवद गीता में कि अगर कोई अपनी भक्ति पूरी नहीं कर पाता तो उसको कोई अच्छे परिवार में जन्म दिया जाता है, शुचि नाम श्री मतांगे है योग भ्रष्टो भिजायते। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं कि इतनी महान भक्ति करने के बाद भी, भाव स्तर के भक्त होने के बाद भी उन्हें एक हिरण का शरीर लेना पड़ा। तो इसका कारण प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं कि भरत महाराज ने अपने आध्यात्मिक कार्यों की उपेक्षा करने तथा तुच्छ हिरण में अत्याधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग का शरीर लेना पड़ा। तो ये दो कारण हैं कि क्यों उन्हें मृग का शरीर लेना पड़ा। पहला कारण, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक कार्यों की उपेक्षा की, और दूसरा एक तुच्छ हिरण के प्रति अत्याधिक आसक्ति। तो इसीलिए एक भक्त को, एक साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए अपनी साधना में। उन्हें आध्यात्मिक कार्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आध्यात्मिक कार्य अर्थात जो हमें आचार्यों के द्वारा शास्त्रों पर आधारित परंपरा से प्राप्त हुई भक्ति की प्रक्रिया हैं, उनको कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए किसी भी स्तर पर। यह हम सबके लिए चेतावनी है कि ऐसा नहीं है कि हमें 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए भक्ति में, अब हम नियमों की उपेक्षा कर सकते हैं। नियमों की उपेक्षा तब व्यक्ति कर सकता है जब उसका मन पूर्ण रूप से कृष्ण में लगा हो। वो स्तर जब हो तब नियमों की उपेक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन अगर किसी का मन एक हिरण में लगा है और एक हिरण या किसी भी अन्य वस्तु से आसक्त होकर अगर वो नियमों की उपेक्षा करता है तो फिर उसके लिए पतन का मार्ग है। तो यहाँ एक प्रश्न आ सकता है कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि किसी की भक्ति का नाश नहीं होता, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो अगर कोई व्यक्ति थोड़ी भी भक्ति करता है अगले जन्म में उससे आगे करता है, तो फिर भरत महाराज को ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर उन्हें क्यों मृग का शरीर लेना पड़ा? क्योंकि व्यक्ति, ये चेतावनियां हैं, ये स्पष्टीकरण प्रभुपाद दे रहे हैं कि भले ही वो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे थे और उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ, ये भी निश्चित है, तभी तो उन्हें जड़ भरत के रूप में या मृग के रूप में भी उन्हें अपना पूर्ण जीवन स्मरण हो आया। तो ये प्रमाण है कि उनकी भक्ति का नाश नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आध्यात्मिक क्रियाओं की उपेक्षा की, और वो भी एक हिरण से अत्यधिक आसक्ति के कारण, कृष्ण से आसक्ति के कारण नहीं, और इसीलिए वो उनकी भक्ति बनी रही, लेकिन उसके फलस्वरूप उनको एक मृग का शरीर लेना पड़ा। दूसरे शब्दों में, अगर हम अपने आध्यात्मिक क्रियाओं की उपेक्षा करेंगे, इस जगत की किसी भी वस्तु जो कृष्ण से संबंधित नहीं है उससे अत्यधिक आसक्ति करेंगे, तो हमारा भगवत धाम जाना थोड़ा सा विलंब हो जाएगा। उसमें हम जाएंगे, अगर हमने बहुत अच्छी भक्ति की है जैसे भरत महाराज, वो जाएंगे भगवान के धाम, लेकिन विलंब हो गया। और कितना विलंब हो गया? दो जीवन का विलंब आ गया, नहीं तो भरत महाराज उसी समय चले गए होते जब पुलह आश्रम में अपने सारे राज्य को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर वो कर रहे थे भक्ति, चले गए होते उसी जीवन में। लेकिन ये विलंब हुआ उनकी उपेक्षा और आसक्ति के कारण। इसीलिए हम सबको, विशेष करके हम लोग जो प्रयास करते हैं कि भगवान के लिए बाकी सब कुछ त्याग दें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सब कुछ त्याग कर ब्रह्मचारी बनते हैं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन अगर उपेक्षा करें हम लोग शास्त्र के नियमों की, आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्ग की, और आसक्त हो जाएं किसी अन्य चीज़ में, तो फिर ये विलंब हो जाएगा। और भरत महाराज क्योंकि इतने ऊंचे स्तर के भक्त थे, इसीलिए केवल एक दो जन्म का विलंब हुआ उनका। हमारी तो भक्ति उस स्तर की नहीं है, इसलिए कितने जन्मों का विलंब होगा पता नहीं उस भक्ति के स्तर तक आने के लिए। इसीलिए सावधान, एक भक्त को हर क्षण सावधान रहना चाहिए, हर क्षण उसको हर समय अपने मन में ये चिंतन करना चाहिए कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूं क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे या नहीं। ये कृष्ण भावनामृत है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है सदैव कृष्ण की भावना में रहना, सदैव ये स्मरण करना कि मैं ये जो करने जा रहा हूं, जैसे अगर भरत महाराज ने किया होता जब वो उपेक्षा कर रहे थे अपने आध्यात्मिक क्रियाओं की, उनको एक प्रश्न करना चाहिए था क्या इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे, जिन वासुदेव के लिए मैंने सब कुछ त्यागा है क्या वो प्रसन्न होंगे मेरी इन क्रियाओं को त्यागने से, अगर हाँ तो ठीक है, और नहीं तो फिर उस वस्तु को त्यागना चाहिए जिससे हम आध्यात्मिक क्रियाओं की उपेक्षा कर रहे हैं। इसीलिए भक्तों के लिए बहुत अनिवार्य है कि वो आत्मविश्लेषण करें, वो बारंबार हर क्षण ये विश्लेषण करें कि मैं जो कार्य कर रहा हूं क्या इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, गुरु आचार्य प्रसन्न हो रहे हैं, परंपरा के अनुसार है, और अगर नहीं तो तुरंत अपने जीवन को बदलना चाहिए। तो इसीलिए अगर हम लोग सब कुछ त्याग कर आते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, चाहे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी जो भी कोई क्यों ना हो, अगर फिर से आसक्ति है, नियमों की उपेक्षा हो रही है, तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर पहले श्लोक में प्रभुपाद चेतावनी देते हैं, इसीलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन दो चीज़ों पर ध्यान रखना। नियमों की अगर उपेक्षा नहीं करें तो फिर आसक्ति नहीं बढ़ेगी, लेकिन जहाँ नियमों की उपेक्षा होती है स्वतः आसक्ति बढ़ जाती है। और एक तुच्छ हिरण से, देखिए भरत महाराज को हिरण से आसक्ति करवाकर भगवान क्या संदेश हमें दे रहे हैं। मान लीजिए भरत महाराज को कोई अप्सरा से आसक्ति हो जाती, जैसे विश्वामित्र मुनि को हुई, तब भी माना जा सकता था कि हाँ ये भौतिक जगत में आकर्षण हो गया, वो एक अप्सरा से आकर्षित हो गए। एक तुच्छ हिरण से कोई अप्सरा नहीं, कोई बहुत बड़ी कोई और इस जगत की शक्ति नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई योग शक्ति नहीं। देखिए किससे आसक्त हुए, एक हिरण से, हिरण के बच्चे से। तो ये दिखलाने के लिए, जैसे प्रभुपाद कहा करते थे, अगर एक गुलाब जामुन की भी आसक्ति है तो इस जगत में वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बतलाने के लिए कि हमारी आसक्ति किसी में भी हो सकती है। आसक्ति का जो हमारा चीज है जिससे हम आसक्त हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे हृदय की आसक्ति महत्वपूर्ण है। और अगर हृदय में आसक्ति है तो हिरण से भी आसक्ति हमारा पतन करा सकती है, और अगर हृदय में आसक्ति नहीं है तो फिर अप्सरा भी आए तो कोई चिंता नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक भक्त को बहुत सावधान रहना चाहिए हर क्षण जीवन के। भक्ति का जीवन ऐसे ही है जैसे हिंदी में कहावत है कि दो धारी तलवार पर चलना। व्यक्ति को अगर तलवार के ऊपर चलना पड़े, तलवार रख दी जाए और उस पर, तो कितना संभाल कर चलना पड़ेगा कि कट नहीं जाए, दोनों तरफ से धार है। इस तरह एक भक्त का जीवन होना चाहिए, उसको हमेशा संभाल कर चलना है, असावधान नहीं होना है। और दूसरा, उस असावधानी के कारण आसक्ति को नहीं लाना है किसी भी वस्तु से, फिर वो चाहे हमारे परिवारजन हो, फिर वो चाहे समाज हो, राष्ट्र हो, देवी देवता हो, या फिर पारिवारिक परंपराएं हो, किसी से आसक्ति नहीं। ये सब हमारे नाश के लिए तैयार है, हमारे पतन के लिए तैयार है। तो इसलिए बिना आसक्ति के अपने कर्तव्यों को करना और भक्ति के कार्यों को कभी त्यागना नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हम सबको याद रखनी चाहिए। भक्ति की क्रियाएं सदैव रहनी चाहिए। और कब त्यागा जा सकता है इसका थोड़े समय बाद वर्णन करेंगे। तो जड़ भरत का जन्म हुआ और उनके पिता बहुत चाहते थे कि इसको मैं ज्ञान दूं, बड़े आसक्त थे उनके पिता, विशेष करके जड़ भरत से। तो पहले तीन श्लोकों में जड़ भरत के जन्म का वर्णन किया गया है कि कैसे जड़ भरत, जैसे हमने पहले श्लोक में पढ़ा कि उनका जन्म हुआ और वो कैसे रहे। तो तीसरे श्लोक में वर्णन है कि जड़ भरत हमेशा लोगों से अलग रहते, अपने संबंधियों से अलग रहते। क्यों? क्योंकि वे भक्त नहीं थे और हमेशा वो याद रखते अपने पूर्व जन्म की एक गलती जो उन्होंने की, हिरण से आसक्ति। इसलिए इस जन्म में वो एकदम ऐसे रहे कि मानो पागल व्यक्ति है, बोल नहीं पाते हैं, अंधे हैं इत्यादि, ज्यादा कुछ नहीं बस। जबकि उनका शरीर बहुत अच्छा था, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन अपने आप को उन्होंने ऐसे रखा। और एक महत्वपूर्ण बात तीसरे श्लोक में कही गई कि उन्होंने ऐसे लोगों के संग से दूर रहे, अपने ही जो उनके संबंधी थे, क्योंकि वो भक्त नहीं थे। तो इसीलिए हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति की क्रियाओं को करें, उपेक्षा ना करें, सावधान रहें। और सावधानी किस चीज में? अभक्तों का संग ना हो, इसमें सावधान रहना चाहिए हमें। क्योंकि जो द्वेषी का संग करता है वो व्यक्ति कभी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। और द्वेषी कौन है? द्वेषी है नास्तिक व्यक्ति, द्वेषी है जो भक्त नहीं है, द्वेषी है वो जो मायावादी हैं, भगवान के रूप को नहीं स्वीकारते। हमें संग से बचना है। संग से बचना ये भक्ति में प्रगति के लिए अनिवार्य है। संग त्यागात सतो वृत्ते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्धति। संग त्यागना है और दुसंग से बचना रहना है हमेशा हमें। सत्संग करना है, दुसंग त्यागना है, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो भरत महाराज बड़े सावधान रहते थे कि कहीं मुझे संग नहीं मिल जाए। तो हमें बचाना चाहिए अपने आप को, रक्षा करनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति को अगर कोई मारने आ रहा है तो कैसे अपनी रक्षा करता है, भागता है। मान लीजिए कोई आपके पीछे तलवार लेकर भागने के लिए भागे, आप क्या करेंगे? आप भागेंगे, छुपेंगे, कहीं और चले जाएंगे, उस जगह से दूर, उस व्यक्ति के प्रभाव से दूर। इस तरह से हमें संघ से अपने आप को बचाना चाहिए, ये जानते हुए कि वो संघ हमें मारने के लिए आ रहा है, हमारी हत्या करने के लिए आ रहा है, आध्यात्मिक रूप से हत्या करेगा ये हमारी। ईशोपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो इस ब्रह्मांड के बड़े गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं, अंधम तमह प्रविश्यन्ति, और जो लोग निराकार की पूजा करते हैं वो उनसे भी ज्यादा गहन अंधकार में जाते हैं, अर्थात दोनों गड्ढे में गिरने वाले। इसलिए ऐसे लोगों के संग की आवश्यकता नहीं, बचाना चाहिए अपने आप को, नहीं तो 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों में जन्म हमें मिलता है दो कारणों से, एक तो हम गुणों का संग करते हैं, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मशु, भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि अलग अलग योनियों को ग्रहण करने का कारण क्या है, कारणम गुण संगस्य, गुणों का संग करते हैं, भौतिक गुणों का। और दूसरा कारण कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतु देहोपपत्तये, भागवत में कहा गया है। दूसरा कारण है हमारे कर्म। तो एक तरफ हम संग करते हैं उसके अनुसार शरीर मिलता है, और उस संग से जो कर्म उत्पन्न होते हैं वो भी प्रभाव करते हैं। तो इसीलिए हमें अलग अलग 84 लाख योनियां लेनी पड़ती हैं, और एक ही मार्ग है इनसे बाहर जाने का, इसको कर्म बंधन कहते हैं। और कर्म बंधन से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, और वो है भगवान की भक्ति। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की भक्ति करने से पहला लाभ होता है कि व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, दूसरा लाभ होता है कि वो अपने आप को बचा लेता है 3 गुणों के प्रभाव से, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति ये 3 गुणों के परे है, विशुद्ध सत्व में है, क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत हैं, इसलिए उनकी भक्ति भी त्रिगुणातीत है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यक्ति या अपने आप को कर्म बंधन से बचाता है, दूसरा जो गुण हैं उनसे वो अपने आप को अलग रखता है, और ये बारंबार का जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसमें नहीं पड़ता। तो भगवान की भक्ति करने के ये लाभ हैं। तो ऐसे भगवान की भक्ति करते हुए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम 3 गुणों से परे जा सकें। तो ऐसे जब ये शरीर में वो रह रहे थे तो वो अलग रहते थे, संग से अलग रहते थे, लेकिन उनके पिता, आगे वर्णन है 4th श्लोक से लेकर 6th श्लोक तक, कि उनके पिता बड़े आसक्त थे भरत महाराज से, और इतने आसक्त थे कि वो सब उसको कराना चाहते थे, उसको अच्छा ब्राह्मण बनाना चाहते थे, उसको गायत्री मंत्र पढ़ाया, सब किया। कई महीनों तक भरत महाराज गायत्री मंत्र बोलने के लिए तैयार नहीं, भरत महाराज ऐसे आचरण कर रहे थे कि आता नहीं है उन्हें। उनके पिता कहते थे शौच जाते हो तो आने के बाद शौच के बाद हाथ धोया करो, तो भरत महाराज पहले हाथ धोते थे फिर शौच के लिए जाते थे, दिखलाने के लिए कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं एकदम मूर्ख व्यक्ति हूं, ताकि कोई उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाए, पिता की भी आसक्ति नहीं हो जाए। तो पिता बड़े प्रयास करते थे, इसमें वर्णन है कि पिता बहुत इनसे विशेष, हालांकि 9 और पुत्र थे उनके, लेकिन इनसे बड़े आसक्त थे। तो प्रयास करते इसको कुछ करा दें, इसको पढ़ा दें, उन्होंने सब प्रयास कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा चलो इसको ब्रह्मचार्य के जो लक्षण हैं, जो ब्रह्मचार्य के कार्य हैं, वो शिक्षाएं दे दें। तो उन्होंने वो शिक्षाएं देनी शुरू की। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि ब्रह्मचार्य के लिए क्या आवश्यक है, तो बताते हैं ब्रह्मचार्य के लिए शुद्ध रहना आवश्यक है, शुद्धता बहुत आवश्यक है, अपने आप को साफ रखना, जहां भी रहें उन स्थानों पर उनको अंदर और बाहर से अपने आप को साफ रखना, वैदिक जो नियम हैं या वैदिक जो प्रण हैं उनको बड़ी कड़ाई से पालन करना, आध्यात्मिक गुरु की सेवा और उनके निर्देशों का पालन करना, ये ब्रह्मचर्य के, स्वाध्याय करना, वेद का पठन करना, ये सब ब्रह्मचर्य के लक्षण हैं। तो उनके पिता ने सोचा कि इनको कम से कम ब्रह्मचर्य के लक्षण तो मैं पढ़ा दूं, इसका कुछ होने वाला तो है नहीं, विवाह तो कौन विवाह करेगा इससे, तो वो भी नहीं उन्होंने सीखे, ऐसे ही रहते थे। तो पिता को बहुत दुख हुआ। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पिता इतने आसक्त थे कि वो भूल गए कि उनकी मृत्यु आने वाली है, लेकिन मृत्यु भूली नहीं। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हम लोग अपने जीवन में कार्य करते हुए ये भूल जाते हैं कि मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं भूलती कि उसे कितने बजकर कितने मिनट पर आना, वो उसी समय आ जाती है, राइट टाइम, कभी देर नहीं होती उसको। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम लोग भूल सकते हैं कि मृत्यु आने वाली है, लेकिन मृत्यु कभी नहीं भूलती। तो देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, हम अपने अपने जीवन के कार्यों में लगे रहते हैं और ये स्मरण नहीं आता कि हमें मृत्यु आने वाली है कभी भी। जैसे वो आसक्त हो गए, उनके पिता भूल गए कि एक दिन मृत्यु आएगी, और फिर मृत्यु आई उनको, उनकी मृत्यु हुई। ये हम सबको भी आनी है, लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब भूले हुए कहाँ याद करते हैं, बताइए। अगर हमें याद हो तो हमारा जप कितना अच्छा हो जाए। अगर हम हर माला जप करने से पहले ये सोचे कि ये मेरी आखिरी माला हो सकती है, हो सकता है इसके बाद मुझे माला करने का अवसर नहीं मिले, तो कितनी तीव्रता से माला होगी, कितनी गंभीरता से हम माला करेंगे, तब नींद आएगी माला में, तब कुछ ध्यान और आएगा माला में, नहीं। जैसे जो व्यक्ति मरने वाला है, मान लीजिए बस मृत्यु के कगार पर है, अभक्त है, तो वो कैसे भगवान का स्मरण करेगा, वो और कोई चिंता नहीं करेगा, केवल भगवान का नाम, क्योंकि उसको मालूम है बस अब मैं देह छोड़ने वाला हूं। तो बड़ी तीव्रता से, गंभीरता से, श्रद्धा से, बहुत निस्सहाय भाव में वो भगवान का नाम लेगा। और हम लोग क्यों नहीं लेते हैं रोज, क्योंकि हमें पता है हमें मृत्यु आने वाली नहीं है। हमें ये पता है कि हमें मृत्यु नहीं आने वाली है, ये हमारा भ्रम है। इसलिए कोई तैयारी नहीं करता मृत्यु की, हम भूल चुके हैं, लेकिन मृत्यु नहीं भूलेगी, याद रखिए। जिस दिन आपका लिखा हुआ है, जब आप गर्भ में थे, चाणक्य पंडित के अनुसार लिख दिया गया किस दिन मृत्यु आने वाली है, तो जिस दिन वो आएगी, समय जो होगा वो भूलेगी नहीं। मृत्यु का डिपार्टमेंट बड़ा परफेक्ट, बहुत बढ़िया है। हम लोग कभी कभी नियम बनाते भूल जाते हैं, ऑल्टर खुलने में 2 मिनट लेट हो जाता है, भोग लगने में 5 मिनट लेट हो जाता है, या हम लोग कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, कहीं जाना है, अरे अरे लेट हो गया। मृत्यु का इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि सारी दुनिया में, सारे जगत में, सोचिए कितना बड़ा कंप्यूटर लगा के रखा होगा यमराज ने। हम लोग सारे कंप्यूटर से सब चलता है, उनका देखिए कंप्यूटर, सारी दुनिया में कहाँ कौन किस वक्त मरने वाला है सब याद रहता है, पहुँच जाते हैं समय पर, लेट नहीं होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है अपनी सेवा के समय, अपने जप के समय, भक्तों से संबंध के समय। जैसे हमें अभी कुछ समय पहले एक भक्त बता रहे थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो वो रो रहे थे कि अरे अरे मैंने पिता के साथ अच्छा आचरण नहीं किया, बहुत मुझे वो, ठीक है पिता की मृत्यु हो गई वो तो ठीक है, वो तो होनी है, लेकिन मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने उनके साथ अच्छा आचरण नहीं किया। तो हमने उनसे कहा कि कम से कम जो अब लोग हैं आपके सामने, उनसे अच्छा आचरण करो, ताकि उनके जाने के बाद भी आपको फिर ये दुख नहीं हो कि अरे इससे भी अच्छा आचरण नहीं किया। तो दोनों तरफ से हमें सोचना चाहिए कि आज मैं इस भक्त के साथ अच्छा आचरण नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कल मैं नहीं रहूँ तो क्षमा भी नहीं मांग पाऊंगा, और हो सकता है ये नहीं रहे तो फिर जीवन भर मुझे उसके अपराध को सहन करना होगा। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकती, इसको भूलिए नहीं। जब कर रहे हैं हम सोचिए कि शायद ये मेरा आखिरी दिन है जब करने का, पता नहीं कल मैं यहाँ मंदिर में बैठकर जब कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, ऐसी भावना में हमें जब करना चाहिए। जब व्यक्ति मृत्यु के कगार पर होगा, आप देखिए वो लोगों से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके प्रति गलत किया, मैंने आपको ये कहा, क्यों उस समय वो सही भाव में आ जाता है कि अब बस, अब अगर मैंने क्षमा नहीं मांगी। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि मरने वाले व्यक्ति हमेशा सत्य बोलते हैं, पता नहीं कलयुग में कितना सत्य है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है। तो तो मरने वाला व्यक्ति है, उस भाव में हमें रहना चाहिए। तो उस भाव में हम कैसे एक दूसरे के साथ, क्या हम उनको कुछ नीचा दिखाने की भावना रहेगी? अगर हम ये मरने वाले हैं, तो हमारे सामने कोई आया तो क्या हम उससे द्वेष करेंगे? अगर जीवन भर द्वेष भी किया है तो उस समय भूल जाएंगे हम लोग, और अगर उस समय भी कोई करता है तो उससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है? मरते मरते भी द्वेष करके जा रहा है, मतलब उसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया। तो इस भावना में हमें रहना चाहिए कि व्यक्ति जब मर रहा है तो हम किससे द्वेष करेंगे, किसको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, कहां हम अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई मर रहा है, उसको आके कहा जाए चलो तुम्हें राजा बना दे, क्या लाभ है? उठने की शक्ति नहीं, जब तक सिंहासन पर पहुंचेगा मर जाएगा, तो वो इच्छा नहीं करेगा या करना नहीं चाहिए उसको। हमें इस भाव में रहना चाहिए कि मृत्यु कभी भी है, तो क्यों हम किसी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करें, क्यों हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, क्यों हम कोई भौतिक चीजों को पाने का प्रयास करें। ऐसे कई मूर्ख होते हैं, मरते मरते कहते हैं एक बीड़ी दे दो, मरते मरते पी जाऊं, बीड़ी पी जाऊं या शराब पी जाऊं। तो भक्तों को तो कम से कम ये नहीं होगा। तो इस भावना में हमें जप करना है, सेवा करनी है, भक्तों से संबंध ऐसे स्थापित करना है। तो उनके पिता वो भूल गए कि मृत्यु आएगी, लेकिन मृत्यु भूली नहीं, सही समय पर उन्हें मृत्यु आ गई। और क्योंकि उनकी मृत्यु हुई तो इनकी जो दूसरी पत्नी थी, जड़ भरत इनकी दूसरी पत्नी से थे, इनकी दो पत्नियां थीं, पहली पत्नी से 9 पुत्र और दूसरी से, जैसे हमने पढ़ा कि एक लड़का और एक लड़की हुए। तो जो जड़ भरत की माता थीं वो अपनी दोनों संतानों को पहली जो उनकी उनके पति की पत्नी थी उनको सौंप कर फिर वो अग्नि में प्रवेश कर गई उनके साथ। तो अब जड़ भरत के लिए ना माता है ना पिता है, सौतेली माँ है, सौतेले भाई है। तो सौतेले भाइयों ने ध्यान नहीं दिया। तो आगे वर्णन किया गया है 7 से 11वें श्लोक में कि कैसे उन्होंने जड़ भरत को ठीक से रखा नहीं, क्योंकि सौतेले भाइयों ने सोचा इसकी पढ़ाई वढ़ाई बंद कराओ, कुछ होने वाला नहीं है, बेकार आदमी है, पागल रहता है हमेशा, तो इसको सब बंद कराओ, अब इसको खेतों में काम कराएंगे। तो उन्होंने काम पे लगा, घर के काम में लगा देते और खाने नहीं देते थे ठीक से। ऐसा लिखा है कि वो जब किसी पात्र में बनाया करते थे तो नीचे चावल जल जाता था, जो लग जाता था वो निकाल के उसको देते थे, तुम ये खाओ, या फिर चूहों के द्वारा कीड़ों के द्वारा खाया गया चावल वो उसको दे देते थे, ये खाओ, पुराना सड़ा बदबू आ रही है वो दे दिया। और भरत, जड़ भरत बड़े प्रेम से उसको खा लेते थे, उनको कोई चिंता नहीं थी। वो ये नहीं सोचते थे कि अरे आप लोग पनीर खा रहे हो, पूड़ी खा रहे हो, ये क्या मुझे दे रहे हो जले हुए राइस, थोड़ा तो कुछ दो। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मुक्त जीव है वो इन सब चीज़ों से परे है, स्वाद इत्यादि से उसको कुछ लेना देना नहीं। वैसे जब हम शरीर की भावना से परे हो जाते हैं बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति ना ही जार, कर्म बंधन कहाँ तार। जिस व्यक्ति के जो देह के स्तर से ऊंचा उठ गया है उसको कौन सा कर्म बंधन है इस जगत में। तो भरत महाराज ऐसे थे, जड़ भरत, कुछ भी खिलाए, लोग उनको बातें करते थे, कुछ बुरा भला कहते थे, कोई उनको ब्रह्म बंधु कहता था, कोई दूसरी तरह से उनको निंदा करता था, वो ऐसे ही रहते, शरीर की कोई चिंता नहीं। एक वस्त्र, वो एक वस्त्र पहना करते, कोपिन पहना करते, और उनके ब्राह्मण का जो धागा है बस वो पड़ा, वो भी गंदा, नहाते नहीं थे, शरीर पे मिट्टी पड़ी हुई, वो जो धागा था पूरा काला हो गया था। और भरत ऐसे जड़ भरत, उनको कोई चिंता नहीं। तो ऐसे उनको भेज दिया जाता था कि जाओ खेतों में करो। अब उनको खेती करना नहीं पता था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कहाँ मिट्टी डालनी है कहाँ नहीं डालनी है कुछ पता नहीं था उन्हें। तो उनके भाइयों ने बिठा दिया, बस रक्षा करो वहां पर बैठकर, तो वो खेतों की रक्षा करते। दूसरी ओर वर्णन करते हैं कि एक डाकुओं के राजा थे। तो 12वें श्लोक से आगे वर्णन किया कि एक डाकुओं का राजा था जो बहुत अमीर बनना चाहता था, धन प्राप्त करना चाहता था। तो उसने एक मनुष्य को बलि के लिए उसने प्रण किया कि एक मनुष्य की बलि भद्रकाली को देंगे। तो उसने एक मनुष्य को पकड़ा, मनुष्य ऐसा जो जानवर के समान होना चाहिए, उसकी बलि वे लोग देना चाहते थे, मतलब पशु की लेकिन जो मनुष्य पशु हो, पशु के समान हो, मतलब ज्यादा उसको बुद्धि नहीं हो, ऐसे व्यक्ति की वो बलि देना चाहते थे। तो उन्होंने पकड़ा एक मनुष्य को और उसकी बलि देने जा रहे थे, तो वो भाग गया। तो इसने भेजा अपने सारे अन्य डाकुओं को, जाओ पकड़ के लेकर आओ उसको कहीं से भी। तो लोगों ने बहुत ढूंढा, वो मिला नहीं। रात्रि का समय था, कहाँ चला गया, अंधकार में कहीं दिखा नहीं। ढूंढते ढूंढते इस खेत में आए तो देखा जड़ भरत बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि ये तो ऐसे, ये भी पशु के समान ही लगता है, इसको ही उठा के ले जाते हैं। तो उन्होंने इसको बांध दिया रस्सियों से, उठा कर ले गए। जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया। प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग पिछले अध्यायों, पिछले श्लोकों में देख चुके हैं कि उनका शरीर बहुत अच्छा था, शक्तिशाली था। चाहते तो विरोध करके उनको मार सकते थे, कोई विरोध नहीं किया, पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा अगर किसी का समर्पण है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं, जैसे आगे हम देखेंगे कि भगवान रक्षा करते हैं। तो अपने शरीर की चिंताओं से परे थे, उनको कोई शरीर की नहीं। और वैसे भी जब कहा जाए उनको ब्रह्म बंधु या वो वेदों का पालन करने वाले, वो कोई शास्त्र का पालन नहीं करते थे, नियम का। तो यहां हम लोग अब देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो शास्त्र के नियम की उपेक्षा कर सकता, जड़ भरत की तरह, जिसका मन सदैव कृष्ण में लगा था, वो सदैव कृष्ण का चिंतन करते थे, उनको अपनी बाहरी चेतना का कोई ख्याल नहीं था। ऐसा व्यक्ति शास्त्रों के नियम की उपेक्षा करे तो उसके लिए ठीक है, क्योंकि शास्त्रों का सार है कृष्ण का स्मरण। जैसे माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी कहते हैं जो भी उनका संध्या वंदन नमस्तुभ्यम, मेरे जितने भी कर्मकांडी कार्य हैं प्रणाम, मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। क्यों? क्योंकि मेरा मन कृष्ण में लगा हुआ। कौन से कर्मकांड किए माधवेंद्रपुरी? लोग कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म कांड करके धीरे धीरे भक्ति के स्तर तक उठना चाहिए, लेकिन जो पहले से भक्ति में लगा है उसके लिए कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिदास ठाकुर, कौन सा कर्म कांड किया उन्होंने? कहां वर्णन है कि हरिदास ठाकुर पहले कर्म कांड करते थे, धीरे धीरे स्तर पर उठे? भगवान का जो नाम ले रहा है उसको कोई आवश्यकता नहीं, जो भक्ति कर रहा है उसको सारे कर्म कांडों को त्याग देना चाहिए। हालांकि कर्म कांड वैदिक आदेश है या वेदों में दिए गए, लेकिन एक भक्त के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य है भक्ति के स्तर तक उठाना। तो इस तरह उन्हें अपने देह का, बाहरी देह का, नियमों का कोई ख्याल नहीं था। और ऐसे भरत महाराज रहा करते थे, तो सब लोग उनको उठाकर ले गए। अब जब वहां ले गए तो फिर उन्होंने बड़े अच्छी तरह से उनको नहलाया, भी बड़ा गंदे थे वो, कई दिनों से, पता नहीं महीनों से नहाए नहीं थे। अब बलि देनी है तो एक बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल सुखदेव गोस्वामी करते हैं, स्वविधिना। स्वविधिना मतलब अपने मन से बनाए हुए नियमों के द्वारा अब वो लोग बलि देने लगे। शास्त्र में वर्णन नहीं है कि अभी उसको बलि देनी है, उसको नहलाना चाहिए, उसको सजाना चाहिए, उसको बड़ी अच्छी तरह से खिलाया भरत को, जड़ भरत को खिला पिला कर उसको एक कपड़े पहनाए पशु के समान अच्छे, और अब उसका वध कर, तिलक विलक लगाकर उसको वध करने के लिए लेकर आ रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि तंत्र शास्त्रों में पशु की बलि देने का विधान है, ताकि लोग अनियंत्रित रूप से मांसाहार ना करें। तो मांसाहार करने वालों को नियंत्रित करने के लिए शास्त्र में पशु के वध की विधि दी गई है, लेकिन मनुष्य के वध की विधि नहीं है। चाहे वो मनुष्य पशु के ही समान क्यों ना हो, उसको कभी नहीं मारा जाना चाहिए, ये गलत है। इसीलिए जो ये डाकू ये सब कर रहे थे, ये शास्त्र के विरुद्ध था। तो वे लोग अपनी स्वविधिना, अपने मन से, और देखिए लोग अपने मन से बहुत सारे विधि विधान बना देते हैं। ये हमारे कुल की परंपरा है, कहाँ लिखा है कुल की परंपरा, कौन से शास्त्र में लिखा है, बस चल रहा है कुल परंपरा। प्रभुपद गिर कहीं नहीं लिखा ये सब, पहले तो मनुष्य को बलि देना ही नहीं लिखा है, और ये सब जो उन्होंने किया, नहलाना, खिलाना पिलाना, देखिए बकरे को किया जाता है, बकरे को जब बलि दी जाती है तो बड़ा खिलाना पिलाना ये सब, और मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हमें भी सावधान रहना चाहिए कि हम लोग इन विधियों में ना फंस जाएं। हमारी कोई पारिवारिक परंपरा चल रही है, हाँ उसको तो करना है, उसका क्या लाभ है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, कौन से शास्त्र में दिया है, पता नहीं। तो इसके कारण असली भक्ति के पथ से हम विमुख हो जाते हैं। जब आचार्यों को, शास्त्रों को, गुरु को त्याग देते हैं तो फिर हम असली भक्ति के पथ से विमुख हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। स्वविधि, अपनी विधि उत्पन्न नहीं करनी चाहिए कि हम तो इस तरह से भक्ति करते हैं। कई लोग बड़े विचित्र तरह से पूजा करते हैं, उनके उनके पूजा के तरीके बड़े बड़े विचित्र हैं। क्या क्या करते हैं बताना। अभी हम कुछ सुन रहे थे कि एक जगह पर जो बिच्छू होते हैं, स्कॉर्पियो, उनकी पूजा की जाती है। पता नहीं कौन से शास्त्र से लिखा हुआ है, कहां पर करना है। तो अलग अलग, कहीं तो एक गांव है भारत में जहां रावण की पूजा की जाती है। आपको पता है, ये तो हमें पता है, निश्चय शास्त्र में नहीं लिखा होगा। रावण की पूजा की जाती है, उसकी यात्रा निकाली जाती है, उसको हाथी पर बिठाकर, ये दशहरे के समय, अभी दशहरा आने वाला, उसकी तो बड़ी पूजा की जाती है उस गांव में, वो लोग रावण के उपासक हैं। तो ये सारी स्वविधि है, कहां से आया पता नहीं, चल रहा है, बस चल रहा है। ये देवी, वो देवी, और देवी को तो इतना दुख होता है, लेकिन क्या करे, ये लोग कर रहे हैं। अभी ये डकैत मार, थोड़ी देवी प्रसन्न हो रही थी, लेकिन वो सोचते हैं देवी को प्रसन्न कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या नियम होते हैं अलग अलग जगहों में। कर्नाटक में बहुत जगहों पर उत्सव मनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उनको, साल दो साल तीन साल में एक बार होता है जत्रा। हाँ, वो जत्रा मनाया जाता है। कभी किसी का लक्ष्मी का जत्रा है, कभी कोई देवी का जत्रा है, कोई सातेरी देवी का जत्रा है, या इंद्र देवी का जत्रा है। और क्या करते हैं जत्रा में, नियम देखिए, ये है स्वविधि। नियम क्या है जत्रा का, जितने भी घर हैं उनमें सब उनके रिश्तेदार आएंगे बाहर से, उनको कपड़ा देना, उनको रहने का देना, और उसके अलावा रोज मांस खिलाना, ये स्वविधि है। कौन से शास्त्र में लिखा है बताइए, एक शास्त्र दिखाइए जहां जत्रे का नियम दिया गया। सारे सारा गांव आठ आठ दिन छुट्टी चलती है वहां, और आठ आठ दिन रोज हजारों बकरे काटे जाते हैं। क्यों, हमारे रिश्तेदार आए, उनको खिलाना है, उनको कपड़ा देना है, लोग हजारों रुपया खर्चा करते हैं अपना इसी पे। ये स्वविधि है, तो कोई शास्त्र का आधार नहीं। हजारों बकरे काट देना केवल देवी के नाम पर, कहीं नहीं लिखा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जिनको मांस खाने की आदत है उनको नियंत्रित करने के लिए दिया गया है कि देवी को आप बकरा चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हजारों की संख्या में मारे और जत्रा हो रहा है। तो ये सारी चीजें स्वविधि है। तो यहां पर उन्होंने अपनी विधि से फिर काटने के लिए तैयार हो गए सब रेडी। तो अब खून अर्पण करना चाहते हैं कि देवी खून पिएंगी, तो उन्होंने तलवार ली और तलवार को मंत्रों के द्वारा शुद्ध किया। और फिर उस तलवार से अब वो मारने जा रहे हैं। तो यहां प्रमाण क्या दिया जा रहा है, ये सब समझाकर सुखदेव गोस्वामी क्यों इतने विस्तार में बोल रहे हैं कि उसको शुद्ध किया, ऐसे मंत्र की, ये किया, वो किया। ये समझाने के लिए कि इस सब से देवी प्रसन्न नहीं हुई। आपने सारे जो अपने नियम थे सब कर लिए, और जैसे ही मारने जा रहे थे उनको, तो उस समय भी वो शांत थे। देखिए, ये भक्त है। भरत महाराज को प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे थे, कह रहे क्या कर रहे हो, भगत भागने का प्रयास कर रहे हैं वो लोग, भरत महाराज जड़ भरत बैठे, ठीक काटना काट दो। ये वो व्यक्ति है जो शरीर की चेतना से परे है, तो क्या लेना देना शरीर है या नहीं, जड़ भरत बैठे। अब उसने तलवार उठाई और मारने जा रहा था, तो अब काली से सहन नहीं हुआ। काली कौन है, अभी कृष्ण लीला में हम लोग सुनेंगे काली कौन है, अष्टभुजा रूप धारण करके कौन प्रकट हुई थी। तो काली से सहन नहीं हुआ, क्योंकि इतने महान भक्त, भले कोई हम लोग नहीं जानते हैं, वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन काली तो देख रही थी, वो तो जानती थी ये क्या हो रहा है। तो देखिए, ये एक प्रमाण है कि अगर हमें देवी देवताओं को भी प्रसन्न करना है तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए, उससे देवी देवता प्रसन्न होंगे। अगर भक्तों की सेवा नहीं है तो काली नाराज हो गए अपने ही उपासकों से। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये देवी देवताओं की भक्ति का मार्ग है, जब तक थोड़ी सी ठीक से करते रहे भक्ति, देवी देवता देते हैं, जहां थोड़ी सी गलती हुई अपने ही उपासकों को मार देते हैं। लेकिन यहां काली ने इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने महान भक्त के प्रति अत्याचार हो रहा है, सहन नहीं हुआ। वो जो मूर्ति थी काली की, वो टूट गई और उसमें से स्वयं काली देवी प्रकट हो गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जड़ भरत
कि शरीर से जो तेज निकल रहा था, क्योंकि वो भक्त थे, उन्होंने हालांकि अपने आप को गंदा रखा हुआ था लेकिन आध्यात्मिक तेज था उनके शरीर से, उस तेज के कारण ये मूर्ति टूट गई और उसमें से काली निकली और उन्होंने उसी तलवार से, जो तलवार इन्होंने तैयार की थी मारने के लिए जड़ भरत को, उसी तलवार से सबको मार दिया उन्होंने। और फिर उनके साथ जितने उनके भूत प्रेत थे सब खून पीने लग गए। उधर तो उत्सव हो गया, उनके जो सर काटे गए थे उनसे वो लोग खेलने लगे, जैसे हम लोग बॉल इत्यादि से खेलते हैं, वो लोग खेल रहे थे। उत्सव हो गया उनके लिए, भूत प्रेतों के लिए। लेकिन काली ने वध कर दिया, काली वो सहन नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान किन लोगों की रक्षा करते हैं। वो कहते हैं पहला लक्षण, भगवान की अगर रक्षा किन लोगों की करते हैं, उन लोगों की जो आत्मा के स्तर पर है, जिन्होंने शरीर के स्तर को त्याग दिया है, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जैसे जड़ भरत की तो भगवान उन लोगों की रक्षा करते हैं। दूसरा, भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो सभी जीवों के हितैषी हैं, सभी जीवों के प्रति समभाव रखते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तीसरा, वो कहते हैं कि उन लोगों के प्रति जब जो किसी दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता, भगवान उसकी रक्षा करते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और प्रभुपाद भी तात्पर्य में इसको लिखते हैं कि ऐसे लोगों की रक्षा सभी भगवान करते हैं, जो आत्मा के स्तर पर हैं, शरीर को त्याग दिया है, जो मुक्त हैं, जो सबके हितैषी हैं और जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये भक्त के लक्षण हैं, सच्चे लक्षण हैं भक्त के। भक्त को पहला लक्षण आत्मा के स्तर पर होना चाहिए, इसीलिए उसको कोई भय नहीं होता है। भक्त क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, इसलिए कोई भय नहीं होता है उसको। तो ये भक्त के लक्षण हैं कि वो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है, सभी जीवों का हितैषी होता है, वो कोई भयभीत नहीं होता और किसी को कभी क्षति नहीं पहुंचाता, हानि नहीं पहुंचाता। और ऐसे लोगों की रक्षा भगवान करते हैं, जैसे जड़ भरत की भगवान ने काली को प्रेरणा दी, जाओ बचाओ मेरे भक्त को, और काली ने बचाया। तो कितने सारे उपदेश केवल इस एक 20 श्लोकों के अध्याय में हमें मिले हैं कि कैसे हमें देखना चाहिए कि देवी देवताओं को प्रसन्न करना है तो भक्त की सेवा करो, भक्त को प्रसन्न किया वे लोग प्रसन्न हो जाएं, और अगर भक्त के प्रति अपराध कोई करता है तो देवी देवता भी सहन नहीं करते, क्योंकि भक्त के प्रति अपराध को बहुत गहन माना गया। तो इसीलिए इस अध्याय से हम लोग ये सीख सकते हैं कि कैसे एक भक्त को रहना चाहिए। प्रारंभिक श्लोकों में उदाहरण दिया जैसे भरत जड़ भरत रहते थे, और दूसरा कैसे एक भक्त को भगवान पर विश्वास होना चाहिए, और तीसरा कि कैसे भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, और चौथा और महत्वपूर्ण संदेश हम सीखते हैं कि अगर हमें इस जगत में सुखी होना है तो भक्तों के प्रति अपराध से बचना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्ण।
तो फिर शास्त्र में ऐसे उदाहरण भी दिए जाते हैं जो इस युग के लिए संभव नहीं,
जो इस युग में संभव नहीं। हाँ, पहला कारण क्योंकि शास्त्र में जो वर्णन किए गए हैं, अफकोर्स कलयुग का भी वर्णन आगे वो करेंगे, लेकिन प्राय जो वर्णन किए गए हैं वो पूर्व काल के हैं, हमें शिक्षा देने के लिए। भले शूद्र हैं, शूद्र का अर्थ क्या है, शूद्र बुद्धि के अनुसार कहा जाता है, जैसे कल हम लोग प्रभुपाद का भी प्रवचन सुन रहे थे। तो शूद्र कौन होता है, जो जिसकी सब बुद्धि बहुत विकसित है उसे ब्राह्मण कहते हैं, थोड़ी बुद्धि कम है वो क्षत्रिय है, उससे कम वैश्य, और बिल्कुल बुद्धि नहीं है वो शूद्र है। तो इसीलिए कलव शूद्र संभव कहा गया। तो कलयुग में सब शूद्र हैं, लेकिन ये उदाहरण देकर उन शूद्रों को भी उस स्तर से ऊंचे उठाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर उदाहरण ही शूद्रों का दिया जाएगा या ऊंचे उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो हम उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे। हमारा प्रयास हो वहां तक पहुंचने का, इसलिए आदर्श दिए जाते हैं। जैसे अगर आपका आदर्श बहुत ऊंचा होगा तब आप थोड़ी बहुत प्रगति कर सकोगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति धन कमाना चाहता है, अब उसकी स्थिति है कि उसके पास दिन का 100 रुपया भी नहीं मिलता है खाना खाने को, लेकिन अगर वो आदर्श रखता है कि मुझे दिन में 1,000-10,000 रुपया निश्चित कमाना है, तो 100 नहीं तो कम से कम 150-200-300 तो वो कमा लेगा अगर उसने उस चीज़ को पाने का प्रयास, केवल आदर्श नहीं, मतलब केवल सपना नहीं देखे कि एक दिन मेरा 20,000 होगा 50, उसको प्रयास करें। तो जितना ऊंचा आदर्श होता है उतना हम प्रयास ज़्यादा करते हैं और उस प्रयास में जितना भी हमारी प्रगति हो जाए। तो इस दृष्टि से उदाहरण जो दिए गए आदर्श उदाहरण है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब आदर्श हैं हमारे लिए, और हमें अपने प्रयास से पहुंचने का प्रयास करना है कि अपने हम अपने प्रयास करें, जो मार्ग दिखलाया है उसको कहें और फिर उस तक पहुंचें। तो इस दृष्टि से शास्त्रों में उदाहरण पूर्व काल के दिए गए हैं, लेकिन आगे जैसे हम लोग देखेंगे 11वें स्कंद 12वें स्कंद में इस काल के भी उदाहरण आएंगे, जैसे अवंती ब्राह्मण का उदाहरण आएगा, एक वैश्य का उदाहरण आएगा, ये आगे के उदाहरण हैं, और फिर 12वें स्कंद में तो कलयुग का पूरा वर्णन आएगा। लेकिन प्रमुखता उदाहरण नहीं दिए जाते, उदाहरण शास्त्र में इसलिए दिए गए हैं पहले के, ताकि हम उस आदर्श तक पहुँचें। हमें वहाँ पहुँचना है तो हमारा आदर्श कहीं कम ना हो जाए। मान लीजिए भक्ति में जैसे हम आए हैं तो हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, तो कहीं दूसरे इधर उधर के उदाहरण से हमारा आदर्श कम ना हो जाए कि ठीक है अगर थोड़ा बहुत सुखी भी रहे इस जगत में तो बहुत है, तो ऐसा कहीं मन में नहीं आए, या हमारे पाप कट गए बहुत है बस ये हमारे लिए काफ़ी, तो ये गलती से भी मन में नहीं आए, इसीलिए बड़े ऊँचे ऊँचे उदाहरणों को दिया गया, बारम्बार दिया गया, इस स्तर पर पहुँचना है, इस स्तर पर पहुँचना। तो ये कारण है कि हमें पूर्व काल के उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन आचार्य जैसे प्रभुपाद उन उदाहरणों को लेकर आज हमें क्या करना चाहिए वो अपने तात्पर्यों में समझाते हैं। तो इसीलिए केवल शास्त्र पढ़ना पूर्ण नहीं है, आचार्यों की जो टिप्पणियां हैं, जो शिक्षाएं हैं, उनके आधार पर अर्थात शास्त्र को आचार्यों की दृष्टि से देखना चाहिए। सीधे शास्त्र को देखकर कुछ नहीं होगा, लेकिन आचार्यों की दृष्टि से देखेंगे। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण भागवत में है, एक स्थान पर देवता शिवजी को भगवान कहते हैं एक ही प्रसंग में, और वहां अगर आप पढ़ लें तो ऐसा लगेगा कि शिवजी भगवान है ये तो स्पष्ट कह रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद हर तात्पर्य में उस श्लोक को समझाते हुए कहते हैं कृष्ण भगवान है, कैसे कृष्ण भगवान है बता। तो इसलिए आचार्यों की टीकाएं चाहिए, तो वो समझाते हैं इस युग के लिए, ठीक है। हाँ यस,
तो ऐसे भी कहते हैं कि अगर जीव जिस भी अवस्था में हो अगर एक बार भी भगवान का नाम ले तो वो भगवान के पास चला जाता है, पर आपने अभी कहा कि पता नहीं हम कहाँ जाएं।
यस, यहाँ भरत महाराज का उदाहरण है, उन्होंने इतनी भक्ति की लेकिन फिर भी उनको मृग का शरीर लेना पड़ा, तो ये चेतावनी है। तो हरि नाम निश्चित है, लेकिन हरि नाम किस भाव में वो महत्वपूर्ण है। जैसे कहा गया है कि अगर कोई मजाक में भी भगवान का नाम ले लेता है उसको भी लाभ होता है, लेकिन उसको पूर्ण लाभ नहीं होता। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं अपराध युक्त नाम, अपराध मुक्त नाम और शुद्ध नाम, इन तीनों का प्रभाव अलग होता है। जब आप अपराध युक्त नाम लेते हो तो कोई भौतिक लाभ मिलता है आपको, जब आप अपराध मुक्त नाम लेते हो तो आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जब आप शुद्ध नाम लेते हो तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हो। तो इसीलिए नाम है, लेकिन हम किस भाव में ले रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और उसी लिए ये सारी बाकी की चीज़ें दी गई हैं। जैसे अगर हम अपराध करते रहें, अपने क्रियाओं को, भक्ति की क्रियाओं को उपेक्षा करें, हम किसी आसक्ति में पड़ जाएं, तो हालांकि हम नाम ले रहे हैं तो उसका लाभ इतना नहीं होगा जो सच्चा लाभ होना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद के जो ये समझाया कि तीन स्तर, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि पहला हमारा स्तर है जहां हम नाम अपराध के साथ ले रहे हैं तो हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, निश्चित क्या होगा, भौतिक लाभ मिलेगा। तो जो असली लाभ है, जैसे कभी कभी उदाहरण दिया जाता है कि एक मच्छर को मारने के लिए अगर हम तोप की इस्तेमाल करें, तो इस तरह की हरि नाम लेकर हमको भौतिक चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हरि नाम ये चिंतामणि है, ये आपको सब कुछ प्रदान कर सकता है, लेकिन आपकी भावना क्या, मांग क्या रहे हैं हरि नाम से। तो इस तरह से वो नाम से हमें लाभ होता है, लेकिन नाम से भी अलग अलग लाभ होते हैं। और इसीलिए इन गुणों को या भक्ति को, भक्ति की क्रियाओं को कड़ाई से करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि हमारा अभी जो मन है, हमारी जो चेतना है, वो भगवान में नहीं लगी है। अगर कोई व्यक्ति एक बार शुद्ध पूर्ण रूप से निस्सहाय भाव से पूर्ण समर्पण से भगवान का नाम लेता है, निश्चित भगवान को प्राप्त करे। लेकिन इस समय हमारी चेतना, हमारा मन, हमारी बुद्धि, तीनों इस समय हमारे उस पर पर्दा पड़ा हुआ, इतने भौतिक कलमश हैं कि हम भक्ति करते हुए भी, भगवान के सामने खड़े होकर भी हम भगवान से लाभ भौतिक ही कामना करते हैं। तो इस दृष्टि से हमें सही लाभ प्राप्त नहीं हो पाता, इसीलिए हमें कड़ाई से नियमों का पालन करना, वैराग्य उत्पन्न करना, ब्रह्मचर्य इत्यादि जो भी पालन हमारे स्थिति के अनुसार है उसको कड़ाई से करना, ताकि हम उस स्तर तक आ सकें जहाँ भगवान का शुद्ध नाम ले सकें, और फिर वो नाम लेकर हम भगवान के धाम जा सकें। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद की।